भागवत सार की श्रृंखला में आज तीसरे स्कंद के 19वें अध्याय पर चर्चा है, जिसमें हिरण्याक्ष का वध होगा। तो इसके एक श्लोक को, पहले श्लोक को पढ़ेंगे और फिर उस पर चर्चा करेंगे। मैत्रेय उवाच अवधार्य विरिञ्चस्य निर्व्यलीकामृतं वचः प्रहस्य प्रेमगर्भेण तदपांगेन सोग्रही अवधार्य विरिञ्चस्य निर्व्यलीकामृतं वचः रहस्य प्रेम गर्भेण तदपांगेन सोग्रही अवधार्य विरिञ्चस्य निर्व्यलीकामृतं वचः रहस्य प्रेम गर्भेण तदभांगेन सोग्रहे। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय ने कहा, अवधार्य सुनकर विरिञ्चस्य ब्रह्मा जी का निर्व्यलीक समस्त पापों से मुक्त अमृतम अमृतमय वचः शब्द प्रहस्य खूब हंसकर प्रेम गर्भेना प्रेम से पूरित तद वे शब्द अपांगेना चितवन से सह श्री भगवान ने अग्रहित स्वीकार किया। अनुवाद और तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद, श्री मैत्रेय ने कहा, सृष्टा ब्रह्मा के निष्पाप निष्कपट तथा अमृत के समान मधुर वचनों को सुनकर भगवान जी भर कर हंसे और उन्होंने प्रेम पूर्ण चितवन के साथ उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तात्पर्य, निर्व्यलीक शब्द अत्यंत सार्थक है। देवताओं अथवा भक्तों की प्रार्थनाएं निष्कपट होती हैं, किंतु असुरों की प्रार्थनाएं सदा कपटपूर्ण होती हैं। ब्रह्मा से वर प्राप्त करके हिरण्याक्ष अत्यंत शक्तिशाली बना, किंतु वर प्राप्त करने के बाद अपने पापपूर्ण मनोभावों के कारण उसने उत्पात प्रारंभ कर दिया। ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं द्वारा की गई प्रार्थनाओं की तुलना असुरों की प्रार्थनाओं से नहीं करनी चाहिए। देवों का अभिप्राय भगवान को प्रसन्न करना था, अतः भगवान हंस पड़े और असुर को मारने की उनकी प्रार्थना उन्होंने स्वीकार कर ली। असुर कभी भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रशंसा नहीं करना चाहते, क्योंकि इनको इतना पता भी नहीं है, अतः वे देवताओं के पास ही जाते हैं। भगवद गीता में इस कृत्य की निंदा की गई है। जो लोग देवताओं के पास जाकर पाप पूर्ण कृत्यों में उन्नति के लिए प्रार्थना करते हैं, वे बुद्धि से विहीन माने गए हैं। असुरों की बुद्धि इसलिए मारी जाती है क्योंकि उन्हें इसका पता नहीं रहता कि उनका हित वास्तव में किस में है। यदि उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की जानकारी होती भी है तो वे उनके पास नहीं जाते। वे श्री भगवान से मनोवांछित वर प्राप्त भी नहीं कर सकते क्योंकि उनके उद्देश्य सदा पापपूर्ण रहते हैं। कहा जाता है कि बंगाल में डाकू अन्यों की संपत्ति लूटने की अपनी पापपूर्ण कामनाओं की पूर्ति के लिए देवी काली की पूजा करते थे, किंतु वे विष्णु मंदिर में कभी नहीं जाते थे क्योंकि विष्णु की प्रार्थना करने से उनके मनोरथ पूरे नहीं हो पाते। अतः श्री भगवान के भक्तों या देवताओं की प्रार्थनाएं सदैव निष्कपट होती हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदेहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमाम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो कल हम लोग सुन रहे थे पिछले अध्याय के अंत में ब्रह्मा जी प्रार्थना करने लगे भगवान से कि अब समय आ गया है, मुहूर्त बस ख़त्म होने वाला है, अभिजीत मुहूर्त जो आपको बड़ा प्रिय है, असुरों का समय शुरू होने वाला है, इससे पहले ही इसका वध कर दीजिए। तो ब्रह्मा जी की प्रार्थनाओं को सुनकर भगवान हंसे और उन्होंने स्वीकार किया। प्रभुपाद तात्पर्य में समझा रहे हैं कि देवताओं की प्रार्थना और असुरों की प्रार्थना में अंतर क्या है। अंतर केवल एक है और वो है उद्देश्य। कोई भी चीज़ उसके उद्देश्य से महत्वपूर्ण मानी जाती है। चीज अपने आप में, क्रिया या कार्य अपने आप में उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना उसका उद्देश्य। जैसे जब हम लोग भक्ति भी करते हैं, आगे वर्णन आएगा इसी स्कंद में कि भक्ति भी अलग अलग उद्देश्य से की जा सकती है और उस उद्देश्य के अनुसार हमारी गति हो सकती है। कोई व्यक्ति भक्ति कर सकता है द्वेष से, किसी से द्वेष करते हुए, हिंसा करते हुए, तो ये भी भक्ति है लेकिन इसका उद्देश्य गलत है। कोई व्यक्ति भक्ति कर सकता है मान प्रतिष्ठा के लिए, ये भी भक्ति है लेकिन इसका उद्देश्य गलत है। और कोई भक्ति कर सकता है भगवान की प्रसन्नता के लिए, ये भी भक्ति है और इसका उद्देश्य सही है। तो हमारी क्रियाएं, हमारे कार्य तब महत्वपूर्ण होते हैं जब उनका उद्देश्य महत्वपूर्ण होता है। अन्यथा जैसे मंदिर है तो मंदिर में तो कोई चोरी करने भी आ सकता है, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जो कोई मंदिर गया है वो भक्त है। हाँ, एक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से है भी, क्योंकि भगवान के पास चाहे चोरी करने क्यों ना आए, लेकिन कई जन्मों के बाद आता है, जल्दी नहीं आता। देवी देवताओं के मंदिरों में चोरी करता रहता है, लेकिन फिर भी हर व्यक्ति जो मंदिर आता है उसको भक्त नहीं कह सकते। कोई चोर भी आता है, कोई अन्य उद्देश्यों से आता है, आर्थो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी, अलग अलग अर्थों से, अलग अलग कार्यों से, अलग अलग उद्देश्यों से यहाँ पर आते हैं या भगवान के पास आते हैं। तो भक्ति भी या अन्य कोई भी कार्य अगर हम करते हैं, उसका उद्देश्य उस कार्य को महत्वपूर्ण बनाता है, और भक्ति को भी शुद्ध भक्ति उसका उद्देश्य बनाती है। हमारे कार्य वही रहेंगे, हमारी क्रियाएं वही रहेंगी, तो फिर भक्ति और शुद्ध भक्ति में अंतर क्या है? हम किसे शुद्ध भक्ति कहते हैं? कभी कभी हम लोग कहते हैं शुद्ध भक्तों की बातें, शुद्ध भक्ति, और हम सोचते हैं अभी नहीं हो सकता हमसे। अंतर क्या है भक्ति और शुद्ध भक्ति में, साधारण भक्ति और शुद्ध भक्ति में? उद्देश्य का। अगर वही क्रियाएं, वही कार्य, वही भक्ति के नियम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किए जाएं, तो वो शुद्ध भक्ति है। अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। उत्तमा भक्ति शुद्ध भक्ति की परिभाषा देते हुए रूप गोस्वामी कहते हैं, अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। तो इसलिए शुद्ध भक्ति और साधारण भक्ति में अंतर क्या है? उद्देश्य का। जब हम वही कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, तब वो कार्य हमारे लिए शुद्ध भक्ति हो जाते हैं। लेकिन जब वही कार्य किसी और उद्देश्य से किया जाता है, तो वो भौतिक हो जाता है। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धोरे प्रेम नाम। शुद्ध प्रेम वो है जहां कृष्ण की प्रसन्नता, कृष्ण की योजना, कृष्ण को आनंद देने की उद्देश्य से कार्य किया जाता है, भक्ति की जाती है। तो इसीलिए यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि प्रभुपाद लिखते हैं उद्देश्य बड़ा महत्वपूर्ण है, और उद्देश्य ही व्यक्ति को असुर या सुर बनाता है। व्यक्ति के कार्यों का उद्देश्य उसको असुर या सुर बनाता है, कुल जन्म उसको असुर या सुर नहीं बनाते। जैसे हम लोग वृत्रासुर की बात कहते हैं, असुर है, लेकिन क्या उसको असुर माना जाता है? हम लोग बड़ा भक्त मानते हैं। प्रहलाद महाराज दैत्य कुल में जन्म हुआ, एक बहुत बड़े राक्षस के पुत्र हैं, असुर के पुत्र हैं, लेकिन वहां रहकर वो राक्षस कुल में रहे, वहीं रहे अपने पिता के पास, उन्हीं मित्रों के पास, उन्हीं असुरों के साथ, लेकिन वहां रहकर उनका उद्देश्य आसुरी कार्य करना नहीं था, इसीलिए वो असुर नहीं कहलाए, वो भक्त कहलाए। तो इसलिए कार्यों का उद्देश्य महत्वपूर्ण है, कार्य उतने महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे मान लीजिए हम लोग सब जप करते हैं, रोज भगवान के नाम का जप करते हैं, निश्चित भगवान के नाम लेने से कुछ ना कुछ लाभ तो मिलता ही है, भौतिक लाभ तो मिल ही जाएगा, लेकिन वो सही उद्देश्य नहीं है। तो अगर हम भगवान के नाम का जप भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं करते हैं, तो फिर ये शुद्ध भक्ति नहीं है। भगवान का नाम लेना भी शुद्ध भक्ति नहीं है, अगर उसका उद्देश्य कृष्ण की प्रसन्नता नहीं है। तो इसीलिए हर कार्य के पीछे एक शुद्ध उद्देश्य होना आवश्यक है, और भगवान उसको स्वीकार करते हैं। जैसे भगवान ने हंसकर ब्रह्मा जी की प्रार्थनाओं को स्वीकार किया, क्योंकि भगवान के प्रति की गई प्रार्थनाएं निष्कपट थी, कोई उसमें कपट नहीं था, धोखा नहीं था, छल नहीं था, स्वार्थ नहीं था, इसीलिए भगवान ने उसको स्वीकार किया। तो अगर हम लोग भी भगवान को ऐसी प्रार्थनाएं अर्पण करें जो निष्पाप हो, निष्कपट हो, निस्वार्थी हो, तो निश्चित भगवान उसको स्वीकार करेंगे। हमारी भक्ति को भगवान तब स्वीकार करेंगे जब ये निष्कपट होगी। जैसे ब्रह्मा जी की प्रार्थनाएं निष्कपट है, कपट अर्थात धोखा। जहां भी धोखा आता है वहां कृष्ण चले जाते हैं। जहां भी व्यक्ति सरल है, स्पष्ट है, सत्यता है, कृष्ण उपस्थित हैं। इसलिए भक्ति में हमें कपट को निकाल देना चाहिए, कई तब धर्म को निकाल कर फेंक देना चाहिए। और कपट क्या होता है? कपट एक दिखावा है, बाहरी दिखावा, अपने भक्त होने का दिखावा, अपने बहुत बड़े ज्ञानी होने का दिखावा, लेकिन हृदय केवल विषय भोगों में। तो ऐसा कपट भगवान को प्रसन्न नहीं करता। हो सकता है आपके कपट से कुछ लोग प्रभावित हों, आपसे मिलने वाले, मंदिर में आने वाले, आपको जानने वाले, हो सकता है लोग आपके कपट से बड़े प्रभावी हो जाएं कि कितना बड़ा भक्त है, लेकिन कृष्ण उनको कोई धोखा नहीं दे सकता। वो तो आपके सोचने से पहले जानते हैं कि आप क्या सोचने वाले हैं। आपके मित्र, आपके संबंधी ये नहीं जानते कि आप क्या सोच रहे हैं, वो ये जानते हैं जो आप बोल रहे हैं। बस आप मन में कुछ और बोल सोच रहे हैं, लेकिन कुछ और बोलिए, आपके मित्र नहीं जान पाएंगे, लेकिन श्री कृष्ण तो जानते हैं। इसीलिए निष्कपट होना चाहिए, भगवान के सामने कोई कपट नहीं। तो ऐसे निष्कपट भाव से, निष्पाप भाव से जब हम भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो वो शुद्ध भक्ति कहलाएगी। तो इस अध्याय में अब जैसे हमने इस प्रारंभ में श्लोक में देखा कि ब्रह्मा जी की प्रार्थनाओं से भगवान प्रसन्न हुए और फिर युद्ध प्रारंभ किया। तो पहले करीब 29 श्लोकों में हिरण्याक्ष के साथ भगवान के युद्ध का वर्णन किया गया है। फिर देवता आए और भी अन्य देवता, उन्होंने गुणगान किया, भगवान ने जब मार दिया। और फिर आगे के श्लोकों में, 4 श्लोकों में वर्णन है कि कैसे भगवान फिर अपने धाम वापस चले गए। और अंतिम 2 भाग हैं जिनमें सूत गोस्वामी कृष्ण कथा सुनने का महत्व बताते हैं, और अंतिम 2 श्लोकों में श्रुति फल दिया गया है। श्रुति फल अर्थात ये जो सारी कथा हमने सुनी वराहदेव की, उसको सुनने का क्या लाभ है। तो ऐसे ये अध्याय है। तो अब ब्रह्मा जी की प्रार्थना को सुनकर भगवान ने कहा ठीक है, अब तो मारना चाहिए, युद्ध करना चाहिए। तो अब युद्ध होने लगा। तो भगवान ने युद्ध करना चाहते थे, तैयार हो गए, उन्होंने अपनी गदा उठा ली उसको मारने के लिए, और उन्होंने अपनी गदा को फेंक दिया, जोर से ऐसे गदा फेंकी, लेकिन हिरण्याक्ष ने अपनी गदा से उसको नीचे गिरा दिया। तो भगवान की गदा नीचे गिर रही है। दरअसल भगवान ऐसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि आनंद लेना चाहते थे। ऐसे ही मार देते, आप इसके अंत में देखेंगे कि भगवान कैसे मारेंगे हिरण्याक्ष को, तब पता चलता है कि ये सब जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी आनंद तो लेना है। अब युद्ध करने के लिए इतना अपने वैकुंठ से नीचे भेज दिया उनको, और अब आनंद नहीं लेंगे, कैसे होगा? दरअसल भगवान वीर रस का आस्वादन जब करना चाहते हैं तो अपने ही किसी भक्त को अपना शत्रु बना देते हैं, और फिर उससे युद्ध करते हैं, आनंद लेते हैं, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे एक बच्चे के साथ पिता युद्ध करता है, छोटा सा बच्चा होता है, इतने इतने उसके हाथ होते हैं, और पिता इतना शक्तिशाली, और बच्चा आके घूंसे मारता है, जोर जोर से बॉक्सिंग करता है, पिता आ, आ, आ और फिर ऐसे करता है, तो उस सब में पिता को बड़ा आनंद आता है, क्योंकि जो बच्चा मार रहा है उसको लगता तो है नहीं, छोटा सा हाथ, उसका क्या पता भी नहीं चलता है कहाँ जगह, तो लगता तो नहीं, दर्द नहीं होता, लेकिन आनंद आता है बच्चे के साथ खेलने में। तो इसी तरह भगवान भी अपने भक्तों के साथ जब खेलना चाहते हैं तो किसी को असुर बना देते हैं, तो कितना ही बड़ा असुर क्यों ना हो, जब भगवान को मारता है तो ऐसे ही कि छोटा सा बच्चा, या फिर कभी कभी यहाँ वर्णन किया गया कि जैसे कोई फूल फेंक रहा हो भगवान के ऊपर, भगवान को ऐसा लगता। जब चाणूर और मुष्टिक भी युद्ध कर रहे थे, भगवान तो बहुत कम उम्र के थे और ये लोग तो बड़े बड़े पहलवान, तो कृष्ण और बलराम को ऐसा लगा नहीं कि अरे बड़ी। एक बार हम कहीं पर देख रहे थे, कोई कृष्ण का कोई चलचित्र था, कोई पिक्चर थी, किसी ने दिखाया, तो उसमें ये प्रसंग था कि चाणूर और मुष्टिक को मारा जा रहा है, और उसमें दिखा रहे थे कृष्ण बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, हो ही नहीं रहा है, बड़ी तेजी से दम लगा के। तो हमने कहा ये सही नहीं है, कृष्ण ने ऐसा कोई दम नहीं लगाया था कि उनको चाणूर मुष्टिक या कंस को मारने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ी, पसीने छूट गए उसने बड़े आराम से। तो ऐसे ही वराहदेव अब यहाँ खेल कर रहे हैं, तो गदा नीचे गिर गई, और देखिए गदा नीचे गिरने के बाद हिरण्याक्ष ने कहा नहीं कि ठीक है, मारा नहीं, हिरण्याक्ष ने पालन किया युद्ध का नियम का। युद्ध का नियम क्या है, अगर अस्त्र नहीं है तो आक्रमण नहीं करना, तो रुक गया वो कि ठीक है उठा लो गदा अगर उठानी है तो। तो खैर भगवान ने गदा नहीं उठाई, अपना सुदर्शन चक्र बुला लिया। तो अब युद्ध बड़ा अच्छा चल रहा था, भगवान देखिए कैसे कैसे आनंद ले रहे थे। तो हिरण्याक्ष के फिर हिरण्याक्ष ने जब गदा चलाई तो भगवान ने उसकी गदा को गिरा दिया, और फिर भगवान ने उससे कहा उठा लो उठा लो उठा लो युद्ध करो। तो हिरण्याक्ष फिर युद्ध करने लगा। उसके बाद ऐसे बहुत युद्ध चला, कभी कभी घूंसे मारता हिरण्याक्ष भगवान को आकर, भगवान की छाती पर बहुत तेज घूंसे, तो वहाँ वर्णन है कि ऐसे लग रहा मानो कोई फूल लाकर भगवान को अर्पण कर रहे हैं। तो भगवान को घूंसे मारता, और ऐसे अन्य तरीके से वो प्रयास करने लगा। फिर उसकी गदा चली गई, भगवान ने कहा उठाओ, लेकिन उसको शर्म आई कि मेरी गदा चली गई, मैं कैसे उठाऊं। उसने त्रिशूल निकाल लिया, भगवान को अब त्रिशूल से मारेंगे। तो फिर त्रिशूल फेंका भगवान की तरफ, भगवान ने उसको भी काट दिया। तो ऐसे युद्ध चलता रहा, यहाँ से फेंक रहे हैं वहाँ, और देवता सारे टेंशन में थे, एकदम चिंता में। जो खेल रहे हैं उनको चिंता नहीं थी, जैसे भारत में हम लोग देखते हैं क्रिकेट चलता है तो दो टीमें खेलती रहती हैं, जो खेल रहे हैं उनको चिंता नहीं है क्योंकि उनको पहले से पता है क्या होने वाला है, वो सब फिक्स करके आए होते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन जो देखने वाला है वो बड़ी चिंता में रहता, हाय 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 पांच रन रह गए, जीतेगा नहीं जीतेगा, चौका लगेगा नहीं लगेगा, बस वो चिंता में रहता। तो ऐसा ही है, ये मैच पहले से फिक्स था, भगवान ने मैच फिक्सिंग किया हुआ था, जानते थे कौन जीतेगा, सब पता था, बस देवता चिंता में होते, ऑडियंस चिंता में थे क्या होगा, भगवान जीतेंगे नहीं जीतेंगे। और इसमें ऐसा था सारे सपोर्टर्स भगवान के थे, दूसरी तरफ के सपोर्टर ही नहीं आए थे, टिकट ही नहीं दिया उनको, स्टेडियम में एंट्री नहीं थी, तो सारे चिंता में हैं और भगवान खेले जा रहे हैं। तो उसके त्रिशूल को भी काट दिया, फिर हाथों से वार होने लगा। फिर ऐसे युद्ध करते करते तो फिर भगवान ने सोचा कि अब मार देना चाहिए। तो कैसे मारा भगवान ने, इसमें वर्णन है कर्णमूलम। कर्णमूलम मतलब जो कान के नीचे, भगवान ने एक थप्पड़ मारा खाली, थपा, और एक थप्पड़ से केवल भगवान के, वर्णन है कि हिरण्याक्ष घूमता घूमता उसकी आंखें बाहर आ गई, उसके हाथ पांव टूट गए, एक थप्पड़ केवल भगवान ने। तो क्यों मारा, ये दिखाने के लिए कि अब तक जो मैं कर रहा था खेल कर रहा था, मुझे ना गदा की जरूरत है ना सुदर्शन चक्र की जरूरत है ना कुछ, तुम्हारे लिए एक थप्पड़ ही बहुत है। तो उन्होंने बम्बई में लोगों को जब मारना होता है तो कहते कि कान के नीचे मारेंगे, ऐसा कुछ कहते हैं। तो जब हम ये पढ़ रहे थे तो हमें यही याद आ रहा था कि हम यही परंपरा आई है, क्यों लोग कहते कान के नीचे मारेंगे, क्योंकि वराहदेव ने भी कान के नीचे कर्णमूलम, तो कान के नीचे मारा और वो घूमता 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 धा गिर पड़ा, मर गया। अर्थात भगवान ये दिखला रहे थे कि किसी असुर कितनी ही बड़ी शक्ति क्यों ना हो, कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, क्योंकि जब ये युद्ध हो रहा था अचानक बीच में सारी आंधी चलने लगी, तूफान आने लगा, लोगों को लगा अब तो प्रलय आ जाएगा, सब मरे जाएंगे। तो कितना ही शक्तिशाली असुर क्यों ना हो, भगवान को उसको समाप्त करने में कोई समय नहीं लगता है। तो ऐसे अलग अलग तरह से लोग मारने लगे। और वर्णन है कि जब हिरण्याक्ष मरने लगा, बस भगवान मारने ही वाले थे, तो उस समय दीति के स्तनों से खून बहने लगा। साधारणतः माता के स्तनों से दूध बहता है, ऐसा वर्णन कई स्थानों पे है। इवन जब भगवान वापस गए मथुरा, तो बहुत बड़े थे, कोई छोटे बालक नहीं थे, लेकिन देवकी ने जब अपने पुत्र कृष्ण को देखा तो उसके स्तनों से दूध बहने लगा। तो साधारणतः जब माता अपने पुत्र को देखती है तो प्रेमवश उसके स्तन से दूध बहता है, लेकिन अब क्योंकि हिरण्याक्ष मारा जाने वाला है, दीति के स्तनों से खून बहने लगा। तो प्रभुपाद बहुत सुंदर बात लिखते हैं, वैसे कहना चाहिए कि किसी के प्रश्न का उत्तर है। प्रभुपाद कहते हैं कि खून और दूध वैसे एक ही चीज है, खून का ट्रांसफॉर्मेशन है दूध, खून से दूध बनता है, लेकिन खून पीना शुभ नहीं है, दूध पीना शुभ माना जाता है। तो ऐसा नहीं है कि लोग कहें कि भाई खून से ही बनता है तो खून ही पी लो डायरेक्ट, क्या जरूरत है दूध पीने की। तो प्रभुपाद कहते नहीं, खून पीना शुभ नहीं माना जाता है, तो खून ही दूध में ट्रांसफॉर्म होता है, चाहे स्त्री हो या गाय। तो क्यों प्रभुपाद ने गाय का लिखा, क्योंकि कई लोग कहते हैं जो अपने आप को बहुत गायों का रक्षक, पर्यावरण का रक्षक मानते हैं, वे कहते हैं कि गाय का दूध नहीं पीना चाहिए, ये गाय के खून पीने के समान है। तो जो लोग गाय का दूध पीते हैं दरअसल वो गाय का खून पीते हैं, उनको पीना नहीं चाहिए। ऐसे कई लोग हैं, आज भी हैं भारत में, कई ऐसे प्रसिद्ध लोग हैं जिन्होंने ऐसे वक्तव्य दिए हैं। तो उनके उत्तर के लिए प्रभुपाद ने ये लिखा है कि कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि खून बदल जाता है जब दूध में, तो उसको लिया जा सकता है। तो गाय का भी हो सकता है जो कहते कि खून है, लेकिन जब वो खून परिवर्तित हो गया दूध में तो वो फिर जीवों के लिए बहुत लाभदायक चमत्कारी पदार्थ बन जाता, इसलिए उसको लेने में कोई गलती नहीं। हाँ, खून डायरेक्ट नहीं पी सकते हैं और पीना भी नहीं चाहिए, ये तो राक्षसों का कार्य है, लेकिन दूध को पिया जाता है क्योंकि ये भगवान की व्यवस्था है। देखिए, जब बालक माँ के गर्भ में होता है तो भगवान व्यवस्था करते हैं उस बालक के लिए सारा पोषण देने के लिए, उसकी मृत्यु नहीं होती है 9 महीने तक, सब पोषण जाता है उसको माँ के द्वारा। तो कहा तो जा सकता है कि माँ का खून ही परिवर्तित होकर उसको शक्ति या पोषण देता है, तो फिर ये कहना चाहिए कि बालक को बिल्कुल माँ का माँ से कुछ नहीं लेना चाहिए। और फिर जब बालक जन्म लेता है तब भी कुछ महीने तक केवल वही खून जो परिवर्तित होता है दूध में, वही दूध पोषण देता है, ये भगवान की व्यवस्था है। तो फिर उसको कैसे गलत माना जा सकता है। जो लोग ये कहते हैं कि गाय का दूध नहीं पीना चाहिए क्योंकि वो गाय के खून के समान है, उनको पूछना चाहिए कि आप जब जन्म लिए थे, जब आपका जन्म हुआ था, तो आपने भी तो अपनी माँ का खून पिया था दूध के रूप में, वो भी तो खून ही है जो दूध बना है, तब आपने क्यों पिया। तो इस बात को बहुत स्पष्ट प्रभुपाद कहते हैं कि दूध को पिया जा सकता है क्योंकि वो पीने के लिए बना है और वो खून का परिवर्तित रूप है। तो ऐसे दीति के स्तनों से खून बहने लगा, दीति बड़ी घबरा गई, लेकिन प्रसन्न भी थी क्योंकि मेरा पुत्र भगवान के हाथों मारा जा रहा। तो ऐसे दीति ने फिर इन चीजों को प्रदर्शित किया और फिर हिरण्याक्ष का वध हुआ, हिरण्याक्ष गिर गए और सारे देवताओं ने देखा कि हिरण्याक्ष की मृत्यु के बाद भी हिरण्याक्ष के शरीर की कांति कम नहीं हुई। ये महत्वपूर्ण बात थी। साधारणतः जब किसी का वध हो जाता है, मर जाता है अर्थात उसके शरीर से आत्मा निकल जाती है, तो फिर उसके शरीर की कोई कांति नहीं रहती, उसका शरीर तो सब उसका तेज चला जाता है, धीरे धीरे काला पड़ने लगता है, खराब हो जाता है शरीर, इसीलिए जल्दी जला दिया जाता है। लेकिन यहां हिरण्याक्ष की कांति कोई कम नहीं हुई, वैसे ही बनी हुई थी। अब प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, क्योंकि भगवान के हाथ का स्पर्श हुआ था, भगवान ने हाथ से मारा तो भगवान के हाथ का स्पर्श हो गया, इसीलिए उसके शरीर की कांति बनी रही। जैसा ये उदाहरण हम पूतना के वध में भी देखते हैं, पूतना के शरीर को जब जलाया जा रहा था तो दूर दूर तक बहुत सुगंध फैल गई, बड़ी अच्छी, तो सबको आश्चर्य हुआ, शरीर जलाने में कहाँ सुगंध आती है, बदबू आती है, इसीलिए उसमें बहुत कुछ डाला जाता है, घी कैम्फर इत्यादि, ताकि बदबू फैले नहीं, कौन से शरीर जलाने में सुगंध आती है। लेकिन पूतना का जब शरीर जलाया गया तो बहुत अच्छी सुगंध फैल रही थी सब जगह, क्योंकि भगवान ने स्पर्श किया था अपने हाथों से। तो यहाँ भी वराहदेव ने स्पर्श किया अपने हाथों से, इसीलिए हिरण्याक्ष के शरीर की कांति मरने के बाद भी कम नहीं हुई। तो ऐसे हिरण्याक्ष को मार दिया भगवान ने, हिरण्याक्ष का वध हुआ युद्ध इत्यादि करके, और उसके बाद सारे देवताओं ने भगवान से, भगवान को धन्यवाद दिया। देवताओं ने कहा कि आपने इसको मार दिया है और हमारे ऊपर बहुत आपने कृपा की है, भगवान को उन्होंने संबोधित किया और फिर भगवान चले गए। और फिर मैत्री मुनि आगे कहते हैं बहुत सुंदर बात कि ये बहुत अच्छे, ये जो संवाद मैंने तुम्हें बताया विदुर को कहने लगे, तो ये मैंने अपने गुरु से इस तरह पहले सुना है। और फिर सूत गोस्वामी आगे शौनकादि ऋषियों को कहने लगे कि ऐसे जो संवाद होते हैं भगवान के परम भक्त के विषय में भी सुनना, या भगवान की लीलाओं को सुनना, ये दिव्य आनंद प्रदान करता है। तो वो कहते हैं कि इस दिव्य आनंद को भगवान और भगवान के भक्तों की लीलाओं को सुनकर लिया जा सकता है, इसका आस्वादन किया जा सकता है। और प्रभुपाद कहते हैं कि भागवतम का शाब्दिक अर्थ है भगवान तथा उनके भक्तों की लीलाएं। तो हमें दोनों सुननी चाहिए, भगवान की लीलाएं और भगवान के भक्तों की लीलाएं। केवल उसको सुन के ही, भगवान की लीलाओं के श्रवण मात्र से ही हम शुद्ध हो सकते हैं। कोई अन्य क्रिया की आवश्यकता नहीं है, योग की आवश्यकता नहीं है, तपस्या की आवश्यकता नहीं है, किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, केवल श्रवण। और फिर उसका उदाहरण देते हैं सूत गोस्वामी कि अगर आपको विश्वास नहीं है तो मनुष्य छोड़िए, अरे भगवान की कथाएं सुनकर तो गजेंद्र भी मोक्ष प्राप्त हो गया, तो फिर बाकियों का कहना क्या। तो उदाहरण है कि गजेंद्र ने कथाएं सुनी थी, इसीलिए तो मोक्ष प्राप्त हुआ उसको। तो श्रवण बहुत महत्वपूर्ण है, श्रवण का वो गुणगान करते हैं। और अंतिम दो श्लोकों में वे वर्णन करते हैं कि श्रुति फल देते हैं, श्रुति फल अर्थात ये जो लीला आप सबने सुनी इसका क्या फल है। तो वो कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, जगत के उद्धार हेतु आदि सूकर रूप में प्रकट होने वाले भगवान द्वारा हिरण्याक्ष वध के इस अद्भुत आख्यान को जो कोई सुनता है, गाता है या इसमें रस लेता है, वह ब्रह्म हत्या जैसे पापमय कर्मों के फल से भी तुरंत मुक्त हो जाता है। तो इसको और आगे वो कहते हैं, यह परम पवित्र आख्यान अद्वितीय यश संपत्ति ख्याति आयुष्य तथा मन वांछित फल देने वाला है। युद्ध भूमि में यह मनुष्य के प्राणों तथा कर्मेंद्रियों की शक्ति वर्धित करने वाला है। हे शौनक, जो अपने अंतकाल में इसे सुनता है वह भगवान के परम धाम को जाता है। हरे कृष्णा। प्रभुपाद तात्पर्य बहुत सुंदर लिखते हैं श्रवण के ऊपर, तो इस प्रवचन को उनके तात्पर्य को पढ़कर अंत करेंगे। प्रभुपाद लिखते हैं, भक्त सामान्य रूप से भगवान की लीलाओं के आख्यानों से आकृष्ट होते रहते हैं और तपस्या या ध्यान न करने पर भी इन लीलाओं के श्रवण मात्र से अनेक लाभ यथा संपत्ति, ख्याति, आयुष्य तथा जीवन की अन्य मनोकामनाएं प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई अपने जीवन के अंतकाल में भगवान की लीलाओं के आख्यानों से परिपूर्ण श्रीमद् भागवत का श्रवण करता है तो वह निश्चित रूप से भगवान के शाश्वत धाम को जाता है। इस प्रकार श्रोताओं को जब तक वे इस भौतिक लोक में रहते हैं तब भी और अंत समय में भी लाभ प्राप्त होता है। भक्ति करने का यही परम शुद्ध लाभ है। भक्ति का शुभारंभ इसी से होता है। भक्ति का शुभारंभ इसी से होता है कि समय निकालकर सही व्यक्ति से श्रीमद् भागवत का श्रवण किया जाए। श्री चैतन्य महाप्रभु भी भक्ति की पांच बातों की संस्तुति करते हैं। ये हैं, भगवत भक्तों की सेवा, हरे कृष्ण मंत्र का जप, श्रीमद् भागवत का श्रवण, भगवान के श्री विग्रह की अर्चना तथा तीर्थ स्थान में वास। इन पांचों कृत्यों के करने से मन मात्र से मनुष्य भौतिक जीवन की कष्टमय अवस्था से उबर सकता है।